सभी को नमस्कार। आज के इस विशेष भक्ति सत्संग के आरंभ में हम सर्वप्रथम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि वातावरण में क्या अनुभव हो रहा है। आज का वातावरण अत्यंत निराला है। भक्ति के स्पंदनों से ओतप्रोत इस वातावरण में सर्वत्र आनंद और चैतन्य के कण फैले प्रतीत हो रहे हैं। अत्यंत उत्साही, आनंददायी तथा चैतन्यदायी ऐसा ये वातावरण हम सभी के लिए अवश्य कुछ आनंददायी समाचार लेकर ही आया है। इसके हमें संकेत मिल रहे हैं। अत्यंत सुंदर और दिव्य वातावरण के कारण हमारा रोम रोम पुलकित हो गया है। ऐसी मनभावन अवस्था में अब हम सभी भगवान के, हम सभी के परम प्रिय गुरुदेव जी के दिव्य चैतन्यदायी श्री चरणों में प्रार्थना रूपी शब्द मोती अर्पण करेंगे। हे गुरुदेव, हम आपके सुकोमल परम पावन श्री चरणों में नतमस्तक है। आज का ये दिव्य वातावरण आपके परम चैतन्यदायी और दिव्य अस्तित्व के भक्ति सत्संग में अवतरित होने की साक्ष्य दे रहा है। वातावरण के कण कण में साक्षात आप ही है, इसकी हमें अनुभूति हो रही है। आपका दिव्य रूप इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में सर्वत्र ही व्याप्त होने की अनुभूति हो रही है। हे गुरुवर, आज के इस आनंददायी वातावरण समान हमारा अंतरंग भी उसी दिव्य आनंद से भर जाए। आपके तेज से, आपकी ऊर्जा से प्रभारित हो जाए। आपका दिव्य अस्तित्व हमारा हृदय मंदिर व्याप ले। हमारे रोम रोम में आपकी ऊर्जा कार्यरत हो जाए। हे गुरुवर, हम पर कृपा करें। हे वात्सल्य मूर्ति, हे करुणाघन गुरुदेव, हम आपकी भक्ति में पूर्ण रूप से सराबोर हो जाएं। हे जगदीश्वर, हम आपके भक्ति रस में डूब जाएं। हमारी अंतर्बाह्य शुद्धि हो और हम निर्मलता की अनुभूति ले पाए। हमें अंतर्बाह्य पारदर्शक बनाए। आपके परम दिव्य सुंदर सलोनी मूर्ति हमारे अंतर में, हमारे हृदय मंदिर में, हमारे चित्त में बस जाए। ऐसी आपके ब्रह्मांड व्यापक चैतन्यमयी श्री चरणों में अनंत अनंत बार प्रार्थना करते हुए ये शब्द सुमन अर्पित कर रहे हैं। अब हम सभी इंद्रियों सहित, सप्त चक्रों सहित अपने रोम रोम से गुरुवर की स्तुति करते हुए दिव्य श्लोक के माध्यम से गुरुदेव जी को आर्तता से पुकारेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान की परम दिव्य लीलाओं की अनुभूति लेकर उस भगवत लीला के विश्व में रममाण होने आए आप सभी को भक्तिपूर्ण नमस्कार। हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन और महान है। इस संस्कृति में बताया गया प्रत्येक आचार आनंद में वृद्धि करने वाला और ईश्वर की ओर ले जाने वाला है। अनेक त्योहार, उत्सव और व्रत के माध्यम से उस दिन आनंद लूटना, ईश्वर का तत्व ग्रहण करना और उसके अनुसंधान में रहना, इसकी हम अनुभूति लेते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता है कि हमारे देश में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक विविध तीर्थ क्षेत्र है। ये तीर्थ क्षेत्र साक्षात चैतन्य के स्रोत है। ये तीर्थ क्षेत्र अपनी परम पावन भारत भूमि को भगवान द्वारा प्रदान किया वरदान है। देवी देवता, ऋषि मुनि और संतों की परम कृपा से हमें अति दुर्लभ तीर्थ क्षेत्रों का चैतन्य मिल रहा है। भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जैसे काशी, प्रयाग, अयोध्या, बद्रीनाथ, द्वारका, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश इत्यादि, ऐसे एक से बढ़कर एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र चैतन्य का स्रोत है। इनमें से ही एक है सुप्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज। इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र के चैतन्य का विश्व भर के जीवों को लाभ होने हेतु वहाँ हर 12 वर्षों में कुंभ मेला होता है। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 से ये महाकुंभ मेला आरंभ हो रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हो रहे इस कुंभ पर्व का अधिकाधिक आध्यात्मिक स्तर पर लाभ कैसे लेना है? इस कुंभ पर्व के रूप में हम सभी के उद्धार के लिए भगवान की दैवीय लीला कैसी है? इस विषय में दिव्य ज्ञान भगवान हमें आज के इस विशेष भक्ति सत्संग से देने वाले हैं। आरंभ में हम कुंभ मेला के विषय में जानकारी लेंगे और कुंभ मेले का महत्व अपने अंतर्मन पर अंकित करेंगे। कुंभ मेला विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। कुंभ मेले में केवल भारत की सांस्कृतिक महत्ता के दर्शन ही नहीं होते, अपितु वो साधु संतों का संग देने वाला आध्यात्मिक सम्मेलन है। कुंभ पर्व के निमित्त से प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर नासिक, इन 4 क्षेत्रों में प्रत्येक 12 वर्षों में होने वाली इस धार्मिक यात्रा का हिंदू जीवन दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान है। कुंभ पर्व की आध्यात्मिक महिमा और सांस्कृतिक महत्व अनन्य साधारण है। वहाँ गंगा स्नान, साधना, दान धर्म, पितृतर्पण, श्राद्ध विधि, संत दर्शन, धर्म चर्चा इत्यादि धार्मिक कृतियाँ करने के लिए करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। कुंभ पर्व जैसे श्रद्धालुओं का मेला ही है। जो साधु संत जीवन भर गुफा में रहकर एकांत में तपस्या करते हैं, वे कुंभ मेला के निमित्त वहां से बाहर निकलते हैं और स्नान के लिए एकत्र आते हैं। कुंभ मेले में उनके दर्शन और सत्संग का लाभ मिलता है। केवल श्रद्धालु ही नहीं, अपितु देवी देवता, ऋषिगण, साधु संत और 33 करोड़ तीर्थ कुंभ पर्व में सम्मिलित होते हैं। ये सब अद्वितीय है। कुंभ पर्व अर्थात प्रत्येक 12 वर्षों में आने वाला पुण्य योग है। कुंभ मेले में धर्म श्रद्धा युक्त आचरण करने वाले श्रद्धालुओं को ही कुंभ पर्व का खरे अर्थ में आध्यात्मिक लाभ होता है। ऐसे इस अलौकिक कुंभ मेले की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका भी अत्यंत प्राचीन इतिहास है। इस विषय में अभी हम देखेंगे। अमृत कुंभ की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीरसागर के मंथन करने का निश्चय किया। परंतु ये मंथन करेंगे कैसे? मंथन अर्थात मथना। इतना विशाल महासागर मथने के लिए कितनी विशाल मथनी लगेगी। फिर इस समुद्र मंथन के लिए मेरु अर्थात मंदराचल पर्वत से विनती की गई। वहां आकर क्षीर सागर में खड़ा हो गया। अब सागर मंथन के लिए मेरु पर्वत से बिलोने के लिए मजबूत डोर की आवश्यकता थी। इसलिए सागर मथने के लिए सर्पराज वासुकी से डोर के रूप में कार्य करने की विनती की गई। नाग वासुकी ने अपनी विशाल और लंबी लचीली देह से मेरु पर्वत को लपेट लिया। अब मेरु पर्वत के एक ओर देवगण खड़े हो गए और दूसरी ओर दानव। नाग वासुकी की पूंछ के सिरे की ओर देवगण थे। पूंछ का सिरा हाथ में पकड़कर देवगणों को और वासुकी के मुख की दिशा में दानवों को वासुकी रूपी डोर खींचनी थी, ऐसा तय हुआ। देवगण और दानव दोनों ही वासुकी रूपी डोर से सागर मंथन करने लगे। मंथन ने जैसे जैसे जोर पकड़ा, वैसे वैसे सागर तल से एक एक रत्न समुद्र की सतह पर आने लगे। सर्वप्रथम हालाहल विष निकला, फिर कामधेनु, उच्चैःश्रवा नामक शुभ्र घोड़ा, चार दांतों वाला ऐरावत, कौस्तुभ मणि, पारिजात कल्पवृक्ष, रंभा आदि अप्सराएं, श्री विष्णु पत्नी श्री लक्ष्मी, सोम अर्थात चंद्र, हरिधनु यानी धनुष्य, शंख, इस प्रकार 12 रत्न क्रम से एक के बाद एक बाहर निकले। जिस अमृत कुंभ के लिए ये सब शुरू था, वो अमृत कलश अर्थात अमृत का कुंभ हाथ में लिए 13वें रत्न के रूप में देवताओं के वैद्य धन्वंतरी बाहर निकले। सबसे अंत में अर्थात 14वां रत्न था ये अमृत कुंभ। धन्वंतरी देवता अमृत कुंभ हाथ में लेकर समुद्र में से प्रकट होने लगे। तभी देवताओं के मन में विचार आया, दानव यदि ये अमृत प्राशन कर अमर हो गए तो उन्मत्त होकर सर्वत्र उत्पात मचा देंगे, सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। इसलिए उन्होंने इंद्रपुत्र जयंत को संकेत दिया। वो तुरंत ही देवता धन्वंतरी के हाथ से अमृत कुंभ लेकर स्वर्ग की दिशा में जाने लगा। ये अमृत कुंभ प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों में 12 दिन और 12 रात्र युद्ध हुआ। देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्य के 12 वर्ष, 12 वर्ष देवता और दानवों में इस अमृत कुंभ के लिए युद्ध हुआ। इस युद्ध में 12 बार अमृत कुंभ नीचे गिरा। तब सूर्य देव ने अमृत कलश की रक्षा की और चंद्रदेव ने ध्यान रखा कि अमृत उसमें से बाहर छलक न पाए। गुरु ग्रह देवता ने राक्षसों का प्रतिकार कर अमृत कुंभ की रक्षा की। इतना होने पर भी प्रत्येक बार और प्रत्येक स्थान पर अमृत कुंभ की छीना झपटी में उसमें से अमृत की कुछ बूंदें कुंभ से बाहर छलक गई। जिन 12 स्थानों पर अमृत कुंभ की बूंदें गिरी, वे स्थान चंद्र, सूर्य और गुरु ग्रह के विशिष्ट योग से कुंभ पर्व माने जाते हैं। उन 12 स्थानों में से पृथ्वी अर्थात इस भूलोक में 4 स्थान है। पहला प्रयाग अर्थात इलाहाबाद, दूसरा हरिद्वार यानी अब जिसे हरिद्वार कहते हैं, तीसरा उज्जैन और चौथा त्र्यंबकेश्वर नासिक। इन चार स्थानों का इसमें समावेश है। इस प्रकार इन चारों तीर्थ क्षेत्रों में कुंभ स्थानों की निर्मिति हुई। शेष आठ स्थान पृथ्वी पर नहीं है, वे अन्य लोकों में है। कुंभ पर्व में इस अमृत कलश का भी स्मरण किया जाता है। अभी हमने कुंभ पर्व की उत्पत्ति की कथा सुनी। भगवान ने इस माध्यम से जो लीला रची है, अब हम उसे समझ लेंगे। समुद्र मंथन के उस दिव्य प्रसंग का अब हम स्मरण करेंगे। उसका दिव्यत्व इस क्षण प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करते ही अत्यंत विशाल क्षीरसागर हमारी आंखों के सामने दिखाई देने लगा है। देव दानवों द्वारा हो रहे क्षीर सागर के मंथन का दृश्य हम देख रहे हैं। देव दानवों ने विशाल मेरु पर्वत और नाग वासुकी रूपी डोर से क्षीर सागर का मंथन किया। सागर के मंथन करने पर उससे बाहर आया हलाहल विष भगवान शिवशंकर ने प्राशन किया। इससे हमें क्षीर सागर शुद्ध दिखाई दे रहा है। देवता और दैत्य पुनः उत्साह से मंथन कार्य करने लगे हैं। अब शुद्ध हुए इस क्षीर सागर से धीरे धीरे बाहर आने वाले एक एक रत्न के हमें दर्शन होने लगे हैं। और सबसे अंत में देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अपने हाथ में कलश लिए दिखाई दे रहे हैं। ये कैसा कलश अर्थात कुंभ है? अरे ये तो वही अमृत कुंभ है जो 14वें रत्न के रूप में समुद्र मंथन से प्रकट हुआ है। अखिल मानव जाति के उद्धार के लिए ईश्वर ने भेंट स्वरूप दिए अमृत कुंभ के प्रति, 14 रत्नों के प्रति तथा भगवान के प्रति हमें अपार कृतज्ञता लग रही है। अब हम देख रहे हैं कि क्षीर सागर का मंथन करने वाले देवताओं और दैत्यों में पुनः युद्ध शुरू हो गया है। हम सोच में पड़ गए कि यह युद्ध क्यों शुरू हो गया। तब हमें ध्यान में आया कि धन्वंतरी देवता के हाथ से वह अमृत कुंभ लेकर इंद्रपुत्र जयंत स्वर्ग की दिशा में जा रहा है। इसीलिए दैत्य चिढ़कर देवताओं के साथ युद्ध करने लगे हैं। देवता अमृत कुंभ की रक्षा करने की सोच रहे हैं तो दैत्य उसे छीनने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं। देवताओं और दैत्यों की छीना झपटी में हमें चिंता सताने लगी है। कहीं वह अमृत कुंभ नीचे न गिर जाए। इतने में ही हमारा ध्यान तेजोनिधि सूर्य देव की ओर गया। सूर्य देव ने अपना तेज सौम्य कर दिया है जिससे हम उन्हें देख पाए, उनका तेज सहन कर पाए। अब हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि इस युद्ध में अमृत कुंभ की रक्षा साक्षात तेजोनिधि सूर्यदेव कर रहे हैं। कुंभ का अमृत बाहर न छलक जाए, इसकी सावधानी साक्षात सोमदेव अर्थात चंद्रदेव रख रहे हैं। गुरु बृहस्पति दैत्यों का संहार करते हुए इस अमृत कुंभ की रक्षा कर रहे हैं। अर्थात अब भी ये अमृत कुंभ देवताओं के पास ही है, इससे हमें संतोष हो रहा है। परंतु ये क्या देवताओं ने इतनी सावधानी बरती, इतना ध्यान रखा, तब भी अमृत कुंभ के लिए दैत्यों के साथ हो रही छीना झपटी से हमें चिंता होने लगी है कि कुछ अमृत बूंदे उस कुंभ से बाहर न छलक जाए। साशंक मन से फिर भी उत्सुकता से भगवान जो दिखा रहे हैं वो दृश्य हम देख रहे हैं। उसी समय भगवान की कृपा से हमें इस विशाल सृष्टि का एक घूमता गोला दिखाई देने लगा है। वह गोला जैसे जैसे हमारे समीप आ रहा है, वैसे हमारे ध्यान में आया कि ये घूमता हुआ गोला वास्तव में पृथ्वी लोक है। उस गोले की काफी दूर पर देव दानवों का युद्ध भी शुरू है। इतने में ही अमृत कुंभ की कुछ बूंदे छलक कर बाहर गिरती दिखाई दे रही है। भगवान द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि के कारण वे अमृत बिंदु अर्थात अमृत की बूंदे इस पृथ्वी तल पर गिरते हुए हमें देखने मिल रही है। उनमें से कुछ अमृत बिंदु उस पृथ्वीलोक की भारत भूमि में उत्तर भारत के प्रयागराज में गिर रही है। हम पुनः देवताओं और दैत्यों में हो रहे युद्ध को देखने लगे हैं। देवता दैत्यों की छीना झपटी अब भी चल रही है। उनकी छीना झपटी में कुछ बूंदे पृथ्वी के गोले की दिशा में आ रही है। उन बूंदों को देखते रहने पर ध्यान में आया कि वे अमृत बिंदु अपने ही भारत के हरिद्वार में पड़ रही है। इसलिए हम पुनः ऊपर देखने लगे कि इतने में ही कुछ अमृत बिंदु उज्जैन में गिरती हुई हमें दिखाई दे रही है। और अब ऊपर देखने के पहले ही हमें ध्यान में आया कि अब वे त्र्यंबकेश्वर नासिक में गिर रही है। अमृत बिंदु जहाँ गिरी है अब वे पवित्र स्थान भी हमें दिखाई देने लगे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि उस विशाल अमृत कुंभ की बड़ी बड़ी बूंदें पृथ्वी पर इन चारों स्थानों पर गिरने से उसके छींटे अर्थात तुषार कण भारत भर में पड़े, इतनी बड़ी वे बूंदे थी। ये संपूर्ण दृश्य देखने में और उसे अनुभव करने में हम तल्लीन हो गए। अरे ये क्या, ये हमारे शरीर पर क्या गिरा? अरे हाँ, मेरे तुम्हारे सभी के शरीर पर जल समान कुछ गिरा है। किसी के सिर पर, तो किसी की पीठ पर, तो किसी के चेहरे, हाथ इत्यादि पर कुछ तुषार स्वरूप में गिरा है। ये कैसे तुषार कण है? हम उसे ध्यान से देख रहे हैं। तब ध्यान में आया कि अरे ये तो और कुछ नहीं अपितु वही अमृत बिंदु है। उन अमृत बिंदुओं के तुषार कणों के चैतन्यमय स्पर्श से हम निहाल हो गए, हम कृतार्थ हो गए। भक्तवत्सल भगवान के प्रति मन ही मन अपार कृतज्ञता व्यक्त हुई। देखते ही देखते ऐसा प्रतीत होने लगा मानो हमारे आसपास का वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र हो गया है। ऐसी अनुभूति हमें हो रही है। अमृत बूंदे जहाँ जहाँ गिरी है वे पवित्र स्थल भी हमें दिखाई देने लगे हैं। उन अमृत बूंदों के गिरने से वे स्थल शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं। इसके साथ ही उस अमृत कलश का अमृतत्व, उसका चैतन्य वेग से संपूर्ण भारत भूमि पर फैल रहा है। मूलतः चैतन्य युक्त भारत भूमि अब और अधिक चैतन्यमय और तेजस्वी होती प्रतीत हो रही है। ये सर्व दृश्य देखते हुए हमारा भाव जागृत हो रहा है। आज भगवान ने इस भावार्चना के माध्यम से इस अमृत कुंभ की अमृत बूंदों की सामर्थ्य और व्यापकत्व हमें ध्यान में लाकर दिया। अमृत कुंभ की अमृत बिंदु भूलोक में केवल चार स्थानों पर पड़ी, परंतु उसका चैतन्य संपूर्ण भारत में फैल गया। इसका भान हमें भगवान ने करवाया। इसके लिए हम भगवान के चरणों में कोटि 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 कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। समुद्र मंथन के इस दिव्य प्रसंग द्वारा हम इस क्षण प्रत्यक्ष भगवत लीला अनुभव कर पाए। अब इस दिव्य इतिहास के साक्षीदार होने के पश्चात भगवत कृपा से मिल रहे इस दिव्य कुंभ पर्व की महिमा हम अपने अंतर मन पर अंकित करेंगे। जिस पवित्र स्थान पर अमृत कुंभ में से अमृत की बूंदे गिरी, वह दिव्य कुंभ क्षेत्र प्रयागराज की महिमा अब हम समझ लेंगे। ये महिमा सुनते समय हम पर शब्द रूप में वह अमृत वर्षाव किस प्रकार हो रहा है इसकी अनुभूति लेंगे। प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र की महिमा से अवगत होकर हम उस दिव्य ज्ञानामृत से शुद्ध और पवित्र होंगे। ये केवल महिमा का श्रवण नहीं अपितु साक्षात प्रयागराज के दर्शन है इसकी हम अनुभूति लेंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती इन पवित्र नदियों के त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ तीर्थ स्थान अर्थात प्रयाग है। गंगा और यमुना ये नदियाँ दिखाई देती है, परंतु सरस्वती नदी अदृश्य है। इस पवित्र संगम के कारण ही इसे प्रयागराज अथवा तीर्थराज कहा गया है। वैदिक काल से त्रिवेणी संगम हिंदुओं का पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। प्रयाग ये नाम अर्थपूर्ण और वेदों समान प्राचीन है। प्रयाग इस शब्द का अर्थ है बड़ा यज्ञ करना। सर्व प्रकार के यज्ञों के लिए प्रयाग ये सर्वोत्कृष्ट तीर्थ होने से उसे प्रयाग कहते हैं। ऐसा उल्लेख स्कंद पुराण में पाया जाता है। प्रयाग का क्षेत्र महात्म्य इस प्रकार है कि खोए हुए चारों वेद पुनः प्राप्त होने पर प्रजापति ने इस स्थान पर एक महायज्ञ किया था, इसलिए प्रयाग को प्रजापति क्षेत्र भी कहते हैं। काशी, प्रयाग और गया इन त्रिस्थली यात्राओं में से एक इस प्रयाग का स्थान धार्मिक दृष्टि से अद्वितीय है। प्रयाग अक्षय क्षेत्र है। अक्षय अर्थात जिसका क्षय अथवा लय नहीं होता। महाप्रलय होने पर भले ही समस्त संसार डूब जाए, परंतु प्रयाग नहीं डूबता। प्रयाग में यमुना के तट पर अक्षयवट है। ये अक्षयवट प्राचीन और पवित्र वटवृक्ष है। प्रलय के अंत में श्री विष्णु यहाँ अक्षयवट पर शिशु रूप में शयन करते हैं। इसके साथ ही सभी देवी देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष यहाँ वास्तव्य कर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। ऐसे इस प्रयाग क्षेत्र की महिमा का वर्णन पुराणों में किया गया है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम पर प्रतिवर्ष माघ माह में मेला होता है। ये माघ मेले के नाम से जाना जाता है। यहीं पर प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ मेला और हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला अर्थात हिंदुओं का सांघिक और आध्यात्मिक बल बढ़ाने वाली यात्रा है। प्रयाग महाकुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कुंभ पर्व के काल में नदी पात्र में पानी अड़ाकर अथवा उसे रोककर अनेक आखाड़े साधु संतों के तंबू खड़े किए जाते हैं। दुकानें लगती है। ये स्थान तब मेले का स्वरूप ले लेता है। उस समय एक विशाल कुंभ नगरी ही तैयार हो जाती है। श्रद्धालु भाविक साधु संतों को उस समय कुंभ मेले का लाभ अधिकाधिक हो, इसलिए मानो साक्षात गंगा माता ही उन सभी पर कृपा वर्षाव करती है, यानी वे कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाती। इसे परम पावन गंगा माता की अपने भक्तों पर कृपा नहीं तो और क्या कहेंगे। करोड़ों लोगों की उपस्थिति में संपन्न होने वाला कुंभ मेला अर्थात हिंदुओं की विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। इस माध्यम से करोड़ों लोगों तक श्री गुरु का कार्य पहुंचाने का, उनकी कीर्ति करने का अवसर हमें मिला है। इस कुंभ पर्व में ये धर्म प्रसार की सेवा करने के लिए अनेक साधक धर्म प्रेमी भी भारी संख्या में सम्मिलित हो रहे हैं। इसकी पूर्व तैयारी भारी मात्रा में और बड़े उत्साह से हो रही है। साधकों को इस अध्यात्म प्रसार की सेवा के लिए, सहायता करने के लिए भगवान भी बहुत कृपालु हो गए हैं। इस दिव्य कुंभ पर्व का आध्यात्मिक स्तर पर अधिकाधिक कैसे लाभ लेना है, इस विषय में अब हम देखेंगे। इन सूत्रों की सहायता से कुंभ क्षेत्र में प्रत्यक्ष उपस्थित साधक इसकी स्थूल से अनुभूति ले सकते हैं, तो अन्य सभी मानस रूप से इसकी अनुभूति लेंगे। कुंभ मेले के काल में अथवा कुंभ स्थल पर किए गए दान आदि सभी धार्मिक विधियों का अथवा नामस्मरण आदि साधना का फल अन्य स्थल काल की तुलना में 1,000 गुना अधिक मिलता है। जो इस समय प्रत्यक्ष कुंभ स्थल पर सेवा साधना करने वाले हैं, वे तथा अन्य सर्वत्र के साधक भगवत भक्त इस कुंभ पर्व काल में सेवा के साथ अधिकाधिक नामस्मरण कर 1,000 गुना लाभ लेने का प्रयत्न करेंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और क्षिप्रा अर्थात नर्मदा, इन नदियों के क्षेत्रों में कुंभ पर्व होता है। नदी के पुण्य क्षेत्र में सूक्ष्म रूप से वास करने वाले अनेक देवी देवता, पुण्यात्माएं, ऋषि मुनि और कनिष्ठ गण भी इस समय जागृत हो जाते हैं, इसलिए उनके भी आशीर्वाद मिलने में सहायता होती है। कुंभ पर्व के काल में अनेक देवी देवता, मातृका, यक्ष, गंधर्व और किन्नर भी भूमंडल की कक्षा में कार्यरत होते हैं। साधना करने से इन सभी के आशीर्वाद मिलते हैं और इसे अल्प समय में कार्य को सफलता मिलती है। इस स्थान पर स्नान ध्यान धारणा करने से हिमालय के सिद्ध ऋषि मुनियों द्वारा आने वाली ऊर्जा हमें प्रत्यक्ष मिलती है। इस पवित्र क्षेत्र में सेवा करने वाले जीवों को सेवा द्वारा ही ध्यान धारणा का चैतन्य प्राप्त होने वाला है, इसलिए सेवा करते समय अखंड नामस्मरण, गुरु स्मरण कर हम ये ऊर्जा प्राप्त करेंगे। कुंभ मेला अर्थात हमारी शीघ्र गति से आध्यात्मिक प्रगति होने के लिए भगवान द्वारा दिया गया सुनहरा अवसर। कुंभ मेले में अनेक ब्रह्मज्ञानी, विविध योग मार्ग के साधु संत एकत्र आते हैं। उनके सत्संग और मार्गदर्शन का लाभ कम समय में और वो भी एक ही स्थान पर मिलता है। उनमें से अनेक लोग अपने प्रदर्शन स्थल पर भी आते हैं, तब उनके सत्संग का लाभ मिले, इसलिए प्रार्थना करते हुए वहां सेवा करेंगे। यही भाव अन्यत्र सेवा करने वाले साधक भी रखेंगे। अध्यात्म प्रसार की सेवा यह हमारी समष्टि साधना है। ऐसी साधना करने का अवसर हमें कुंभ मेले के निमित्त से मिला है। अभी अभी जैसे हमने सुना कि कुंभ क्षेत्र में साधना करने से उसका 1,000 गुना लाभ होता है, तब केवल धर्म प्रसार का कार्य नहीं, अभी तो उस माध्यम से हमारी साधना भी होने वाली है। ऐसा भाव रखकर और अधिक मात्रा में लाभ लेंगे। अनेक वर्ष और अनेक स्थानों पर जाकर तथा लंबे समय तक प्रयत्न करने पर भी हम करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंच सकते, परंतु कुंभ मेले के माध्यम से श्री गुरु ने हमें यह अवसर उपलब्ध करवाया है। हम एक ही स्थान पर होंगे, परंतु करोड़ों लोग स्वयं हमारे पास आएंगे। श्री गुरु के दिव्य ज्ञानमय चैतन्य की ओर, उस चैतन्य रूपी प्रदर्शन की ओर वे स्वयं आकृष्ट होने वाले हैं। इतने व्यापक स्तर पर गुरु कार्य करने का सुनहरा अवसर हमें मिल रहा है। ये ध्यान में रख लगन से सेवा करेंगे। कुंभ मेले के समय उस स्थान की स्थिति दैवीय बल की सहायता से कार्य करने के लिए अत्यंत पूरक होती है। उस समय कुंभ मेले के क्षेत्र में अमृत तरंगे अवतीर्ण होती है, इसलिए उस माध्यम से समष्टि का कल्याण करने से ईश्वरीय कृपा भी संपादन कर सकते हैं। इस कारण कुंभ क्षेत्र में हम जो भी सेवा करने वाले हैं, उससे जो गुरु कार्य का प्रसार होने वाला है वह उसी दैवी बल पर होगा। निश्चित रूप से हमें प्रत्येक सेवा के लिए दैवी कृपा का समर्थन मिलेगा। हम केवल उसके लिए माध्यम होंगे। ये ध्यान में रखकर हम अपनी साधना के लिए उसका लाभ लेंगे। कुंभ मेला अर्थात दैवीय कृपा का वर्षा होने का काल ये अपने अंतर मन पर अंकित करेंगे और प्रत्येक क्षण सेवा करते समय इसकी प्रचिति लेंगे। कुंभ मेले का ये चैतन्य केवल उस स्थान तक मर्यादित नहीं रहता, वह भारत भर में सर्वत्र प्रक्षेपित होता है। ये चैतन्य बहुत व्यापक होता है, इसलिए ये सूत्र केवल कुंभ क्षेत्र में सेवा करने वालों को ही नहीं अपितु सर्वत्र के साधकों के लिए, सर्वत्र के भगवत भक्तों के लिए उपयुक्त है। ये ध्यान में रख कुंभ क्षेत्र में सेवा करने वाले साधकों सहित सर्वत्र के साधकों को और विश्व भर के प्रत्येक जीव को इसका लाभ होगा। कुंभ मेला इस शब्द के कुंभ का आध्यात्मिक स्तर पर भावार्थ क्या है ये आप समझ लेंगे। कुंभ अर्थात मिट्टी का घड़ा अथवा मटका। ये कुंभ मानवी देह का प्रतीक माना जाता है, कारण मानव की देह मिट्टी से बनी है और मृत्यु के पश्चात वो मिट्टी में ही विलीन हो जाती है, इसलिए कुंभ मानवी देह का प्रतीक है। कुंभ मेले में जाकर केवल नामस्मरण करने से तथा सेवा करने से विशेष लाभ नहीं होगा, अपितु अपने स्वभाव दोष और अहंकार से भरा मन बुद्धि और अहम का कुंभ तीर्थ क्षेत्र में सेवा करते समय हम रिक्त करेंगे, खाली करेंगे, तभी हमें देवी देवता और साधु संतों के आशीर्वाद मिलेंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा। ये और अधिक स्पष्ट होने के लिए हम संतों का एक प्रसंग देखेंगे। 700-800 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में अनेक संत रत्न हुए। संत निवृत्तिनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत सोपानदेव, संत मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा कुंभार जैसे अनेक संत रत्न जगत के उद्धार के लिए कार्यरत थे। ये संत समाज को भक्ति मार्ग की ओर मोड़ने का महान कार्य कर रहे थे। इन संतों के माध्यम से जगत को सीख देने के लिए एक बार भगवान पांडुरंग ने ही लीला रची। अब हम सभी भगवान की उस लीला को प्रत्यक्ष में अनुभव करेंगे। एक बार संत निवृत्तिनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत सोपानदेव और संत मुक्ताबाई ये चारों भाई बहन और संत नामदेव संत गोरा कुंभार के यहाँ एकत्र हुए थे। इनके अतिरिक्त कुछ और भी संत वहाँ आए थे। गगरी मटके बनाना ये संत गोरा कुंभार के जीवन निर्वाह का साधन था। संत गौरोबा के आंगन में अनेक गगरियां और मटकियां रखी थी। उनमें से कुछ कच्ची यानी हाल ही में बनाई थी तो कुछ पक्की बनकर तैयार थी। चाक पर भी मटके थे। छोटी सी मुक्ताई ने आंगन में रखी मटकियों की कतार देखी। इतने में ही उसका ध्यान वहां रखे हुए एक डंडे की ओर गया, जिसका उपयोग मटका कच्चा है या पक्का ये जांचने के लिए किया जाता था। उस डंडे को देखकर मुक्ताई ने उसे हाथों में उठा लिया और उत्सुकता से गोरा कुंभार से पूछा, गोरोबा काका, ये क्या है? गोरोबा बोले, ये डंडा है। मुक्ताई बोली, ये किस लिए उपयोग करते हैं? गोरोबा बोले, मटके पर इस डंडे से हल्के से थपथपाने पर ध्यान में आता है कि मटके आग में पक गए हैं अथवा कच्चे रह गए। मुक्ताई बोली, गोरोबा काका, मुझे भी देखना है कि मटके कच्चे हैं अथवा पक्के, मैं देखूं। उसकी बात सुनकर गोरोबा ने वो डंडा मुक्ताई के हाथ में थमा दिया, उसे कैसे थपथपाना है ये भी दिखाया। मुक्ताई ने एक एक कर संत गोरोबा के आंगन में जितने भी मटके थे उन सभी को थप थपा कर जांचा। वह करते हुए मुक्ताई को आनंद हो रहा था। सभी मटके मटकियां जांच लेने पर मुक्ताई वहां पहुंची जहां सभी संत बैठे थे। इतनी छोटी आयु में ही संत पद को प्राप्त करने वाली मुक्ताई के माध्यम से भगवान ने कुछ अलग ही लीला करने की सोची। मुक्ताबाई ने प्रथम अपने बड़े भाई संत निवृत्तिनाथ के सिर पर उस डंडे से हल्के से थपथपाया। मुक्ताई की इस कृति पर निवृत्तिनाथ मुस्करा दिए। मुक्ताई बोली, ये मटका पक्का है। फिर उसने अपने लाडले ज्ञान दादा की परीक्षा ली। मुक्ताई के उनके निकट पहुंचते ही ज्ञानदेव ने स्वयं ही अपना मस्तक उसके सामने झुका दिया। मुक्ताई ने उनके सिर पर धीरे से थपथपाया। उन्होंने भी हंसकर मुक्ताई को प्रतिसाद दिया। मुक्ताई बोली, ये मटका भी पक्का है। मानो मुक्ताई एक एक कर एकत्र हुए संतों की परीक्षा ले रही हो। उसने एक एक कर सभी के सिर पर डंडे से थपथपाया। सभी उसकी इस कृति का शांति से आनंद ले रहे थे। वह जब उनके सिर पर डंडे से थपथपाती और वे हंस देते तो वो कहती, ये मटका पक्का है, और हंसते हुए आगे बढ़ जाती। इस प्रकार उसने सभी के सिर पर हल्का सा प्रहार किया। यहाँ तक कि मुक्ताई ने गोरोबा काका को भी नहीं छोड़ा। अब नामदेव की बारी थी। नामदेव बड़े संत थे, साक्षात भगवान भी उनसे बोलते थे। नामदेव जब मुक्ताई की आयु के थे तब उनके हट करने पर साक्षात भगवान ने उनकी दी हुई खीर खाई थी। वही संत नामदेव मुक्ता का ये खेल देख रहे थे। जब ये खेल उसके भाइयों के साथ चल रहा था तब तक विनोद के रूप में सब ठीक था। मुक्ताई जब नामदेव के सामने आई तब नामदेव के मन में विचार आया, मुक्ता का ये बचपना बहुत हो रहा है, थोड़ी देर के लिए विनोद ठीक है, अब तो ये सभी के सिर थपथपाती जा रही है, अब वो मेरी ओर आ रही है। नामदेव के अहंकार को ठेस लगी। उन्हें लगा, मैं इतना महान विट्ठल भक्त और ये छोटी लड़की मुझे परख रही है, मेरा अपमान कर रही है। वो ये विचार कर ही रहे थे कि इतने में मुक्ताई ने उनका भी सिर थपथपाया। इससे और क्रोधित नामदेव के आंखों में आंसू आ गए। ये देख मुक्ता बोली, ये मटका अब भी कच्चा है। मुक्ताई के ऐसा कहने पर सभी हंस दिए, परंतु उसकी बात सुनकर नामदेव को और अधिक दुख हुआ। वे बोले, साक्षात भगवान विट्ठल मुझसे बातें करते हैं, मेरी सुनते हैं, और ये मुझे कच्चा मटका कहते हुए मेरा अपमान कर रही है। तब उन्हें शांत करते हुए गौरव काका बोले, नामदेव तुम महान हो, भगवान के परम भक्त हो, ये मान्य है, परंतु तुम में अहंकार है। वो जाने तक भक्ति मार्ग में तुम्हारी प्रगति कैसे होगी? अरे मुक्ता का कहना उचित ही है। तदुपरांत वे नामदेव को समझाते हुए बोले, नामदेव शांत हो जाओ, तुम्हें अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। चाहो तो भगवान विट्ठल से ही पूछ लो। गौरव काका के ऐसा कहने पर नामदेव रोष में ही वहां से निकले और सीधे मंदिर में भगवान विट्ठल के पास गए। उन्होंने पूरा वृत्तांत विट्ठल को सुनाया। इस पर विट्ठल भगवान ने भी उनसे कहा, नामदेव गुरु मिले बिना अध्यात्म में प्रगति नहीं, तुम्हें गुरु करना ही चाहिए, इसलिए तुम्हें गुरु की खोज में जाना ही चाहिए, सद्गुरु मिलने चाहिए, तभी तुम खरे अर्थ में संत बनोगे। फिर नामदेव खरे अर्थ में संत बनने के लिए गुरु की खोज में निकले। श्री विट्ठल की ही कृपा से नामदेव को विसोबा खेचर गुरु के रूप में मिले और गुरु कृपा से उनकी भक्ति की अपूर्णता दूर हुई, उसमें परिपूर्णता आई। इस कथा से हम सभी के ध्यान में आ ही गया होगा कि ईश्वर हमें कितना बड़ा और महत्वपूर्ण बोध दे रहे हैं। ऐसे अत्यंत बोधमय प्रसंगों में हमारे जीवन का, हमारे उद्धार का मार्ग छिपा हुआ है। तो चलिए इस कथा के माध्यम से ईश्वर जो हमें बोध दे रहे हैं उसे हम उन्हीं के कृपाशीर्वाद से ग्रहण करेंगे। मैं ईश्वर का हूँ, उनका प्रिय हूँ। ईश्वर मुझसे बात करते हैं, मेरे साथ नाचते हैं, गाते हैं। इसका नामदेव जी को अहंकार हो गया था, इसलिए ईश्वर ने लीला रची और मुक्ताई के माध्यम से उनका अहंकार तोड़ने का निश्चय किया। इसलिए गोरोबा काका के यहाँ एकत्रित हुए संतों की उपस्थिति में छोटी सी मुक्ताई ने नामदेव जी को इसका भान करवाया। वह बोली, नामदेव जी का मटका अर्थात कुंभ अहंकार से भरा हुआ है, इसलिए नामदेव अब भी कच्चे ही हैं। इससे ध्यान में आता है कि संत नामदेव में जो भी थोड़ा बहुत भक्ति का अहंकार शेष था, इसलिए मुक्ताई ने और साक्षात विट्ठल ने भी कहा कि उनका कुंभ अभी कच्चा है। वास्तव में हमें सिखाने के लिए ही भगवान की ये लीला है। इस प्रसंग को सुनने के पश्चात यदि हम आत्मचिंतन करेंगे तो हमें अपनी भी स्थिति ध्यान में आएगी। हम सभी ये ध्यान में रखेंगे कि हम सब भी कच्चे घड़े अथवा कुंभ ही है। इसका कारण है हमारे दोष, अहंकार, विषय विकार। हम इनसे ग्रस्त हैं, माया में उलझे हैं। प्रत्येक को अपने रूप, अमीरी, कर्तृत्व, अपनी साधना अथवा भक्ति, इनमें से एक का तो अहंकार होता ही है। इसके साथ ही हमारा मन अनेक स्वभाव दोषों से भरा है, अनेक दोष, अहंकार, पाप, विकारों से हमारा मन रूपी कुंभ भरा है। इसलिए हमारा कुंभ कितना कच्चा है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सभी ध्यान में रखेंगे कि हम कितनी भी साधना करें, साधना और भक्ति कर भगवान के भक्त बन भी गए, तब भी जब तक हम में रत्ती भर भी अहंकार होगा, अंश मात्र भी अहंकार शेष होगा, तब तक साधना में हमारी प्रगति नहीं हो सकती अथवा साधना को परिपूर्णता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए साधना मार्ग पर मार्गक्रमण करते हुए निरंतर भगवान की लीलाओं का, उनकी महिमा का स्मरण करेंगे। प्रत्येक बात का मूल अन्य कोई नहीं, केवल और केवल परमेश्वर ही होता है। ये अपने अंतर्मन पर अंकित कर लेंगे, अपने चित्त पर उसका संस्कार दृढ़ कर लेंगे और साधना में अपनी प्रगति कर लेंगे। ऐसा अनेक बार होता है कि साधना के प्रयत्न करते समय अथवा सेवा करते समय हमें प्रोत्साहन देने के लिए भगवान कुछ अनुभूतियां देकर हम पर कृपा करते हैं। इसमें वास्तव में हमारे प्रयत्न अंश मात्र ही होते हैं, नगण्य होते हैं। भगवान की ही कृपा अधिक होती है, परंतु यही हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमें अनुभूति इसलिए हुई क्योंकि हमने प्रयत्न किए। इस मैपन का भ्रम जब तक नहीं टूटता, तब तक हम कच्चे मटके ही हैं। ये ध्यान में रखेंगे। हमें अपने अंतर में थोड़ा बहुत भान होता है अथवा कई बार हम ऐसा कहते भी हैं कि भगवान ने करवा लिया, भगवान के कारण हुआ। परंतु हम जो कुछ भी कृति करते हैं, उसका थोड़ा बहुत अहंकार हमारे चित्त पर हो ही जाता है। इसलिए हम अपने अंतर्मन पर अंकित करेंगे, हम कितने भी बड़े भक्त हो जाएं, तब भी अहंकार नष्ट हुए बिना हम साधना में आगे नहीं जा सकते। करण करावनहार मैं नहीं, अपितु साक्षात परमेश्वर है, ये विचार सदैव रखकर प्रयत्न करना तथा हमसे जो प्रयत्न होते हैं उतने में संतुष्ट न रहकर साधना में आगे आगे जाने के लिए प्रयत्नरत रहना, यही हमारे मन रूपी कुंभ को पक्का करने की गुरु कुंजी है। ये हम ध्यान में रखेंगे। अनेक दोष, अहंकार, पाप और विकारों से भरे अपने इस मन रूपी कुंभ को रिक्त करना होगा। उसे रिक्त करने का सर्वोत्तम स्थान और काल है ये कुंभ पर्व। ईश्वर की कृपा से इस वर्ष हम सभी को शीघ्र गति से शुद्ध और निर्मल होने की अनुभूति लेने के लिए कुंभ मेला के रूप में सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। ये कुंभ मेले का आयोजन अर्थात अखिल मानव जाति पर ईश्वर की परम कृपा ही है। ईश्वर ने इस कुंभ मेले के माध्यम से मनुष्य को शीघ्र गति से मुक्त होने का मार्ग दिखाया है। साधना के प्रयत्नों द्वारा हम दोष, अहंकार और विकारों की अशुद्धि से भरा मनरूपी कुंभ रिक्त करेंगे। साधना के प्रयत्नों से हम अपने मन रूपी कुंभ को पक्का भी कर ले। दोष अहंकार और विकारों से भरे कुंभ को रिक्त अथवा खाली कर ले, तब भी उस कुंभ को शोभा कब प्राप्त होगी? तो जब वो सद्विचार सद्गुण रूपी अमृत से भरेगा, तब अमृत कुंभ की प्राप्ति के लिए देवताओं ने अपार कष्ट किए। इसका स्मरण रखते हुए हम भी अपने मन रूपी कुंभ में एक एक कर अमृत की बूंदों को संजोने का प्रयत्न करेंगे। सद्गुण रूपी अमृत, भावामृत और ज्ञानामृत, इनसे उस कुंभ को शोभा प्राप्त होगी। साधना के प्रत्येक प्रयास से अमृत की एक एक बूंद उस कुंभ में एकत्र होगी, इसकी हम प्रचिति लेंगे। संत नामदेव जी के प्रसंग से हमें एक और बात जो सीखने मिली, वो है जीवन में गुरु की आवश्यकता। संत नामदेव जी को गोरोबा काका और साक्षात भगवान विट्ठल ने भी बताया कि गुरु के बिना हम जो साधना के प्रयत्न करते हैं, उससे हमारी भक्ति में पूर्णता नहीं आ सकती। गुरु की ये महिमा बताते हुए संत कबीर भी कहते हैं, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाए चोट। यहाँ संत कबीर जी ने गुरु को कुम्हार की उपमा दी है और शिष्य अर्थात मिट्टी का कच्चा कुंभ अर्थात मटका, उस शिष्य रूपी मटके को कुम्हार रूपी गुरु अंदर से अपने हाथ से आधार देते हैं और बाहर से उसे थपकियां देकर उसे ठोकते पीटते हुए उसके दुर्गुण नष्ट करते हैं। इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को तैयार करते हैं। गुरु के अभाव में शिष्य का जीवन उस मिट्टी के गोले समान है। गुरु ही उसे उत्तम ढंग से आकार देकर बनाते हैं, उसका चरित्र निर्माण करते हैं। शिष्य के सभी दोष उसके दुर्गुण नष्ट कर उसके जीवन को अंतर्बाह्य सुंदर और अर्थपूर्ण बनाते हैं, उसका जीवन परिपक्व बनाते हैं। इस प्रकार शिष्य के जीवन में विविध भूमिका निभाने के साथ ही कुम्हार की भी भूमिका निभाकर उसे तैयार करने वाले श्री गुरु के परम पावन श्री चरणों में हम कृतज्ञता पूर्वक शतशः वंदन करेंगे। इस महाकुंभ पर्व का 1,000 गुना लाभ लेने हेतु हम सभी कैसे प्रयत्न करेंगे? उसके लिए हम प्रतिदिन प्रयत्न करते समय क्या ध्येय रख सकते हैं? उसे पुनः एक बार हम अपने अंतर्मन पर अंकित करेंगे। हम सभी ये ध्येय अपनी बही अर्थात कॉपी में लिख लेंगे। उसके साथ ही इस ध्येय के अनुसार हमारे प्रयत्न हो रहे हैं ना, इसका प्रतिदिन ब्यौरा भी लेंगे। पहला भाव प्रयत्न है, प्रतिदिन स्नान करते समय हम कुंभ क्षेत्र में ही स्नान कर रहे हैं। त्रिवेणी संगम के उस पवित्र जल से हमारी अंतर्बाह्य शुद्धि हो रही है, ये भाव रखेंगे। उसके साथ गुरु स्मरण भी करेंगे, इसलिए वह अपने आप ही तीर्थ स्नान होगा। दूसरा भाव प्रयत्न है, आज हमने भावार्चना में अनुभव किए अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की कुछ बूंदे इस भूतल पर पड़ी। सूक्ष्म रूप से उनके भूतल पर गिरने पर उसकी छींटे अथवा तुषार कण हम पर भी पड़ रहे हैं। उससे हमारी निराशा नष्ट हो रही है। मन आह्लाददायी और उत्साही है। हमारी शुद्धि हो रही है। ऐसे अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। तीसरा भाव प्रयत्न है, हमारा मन रूपी कुंभ पक्का करने के लिए, दोष अहंकार दूर करने के लिए लगन से प्रयत्न करेंगे तथा साधना के प्रयत्नों से मन रूपी कुंभ रिक्त कर उसे भाव भक्ति रूपी ज्ञान रूपी अमृत की बूंदों से भरेंगे। इस प्रकार से भाव प्रयत्न कर हम इस महाकुंभ पर्व का 1,000 गुना लाभ उठाएंगे। निरंतर किए भावपूर्ण प्रयत्नों द्वारा अमृत से भी मधुर ऐसा भावानंद चखेंगे। आज के भक्ति सत्संग में कुंभ पर्व की महिमा का श्रवण कर ऐसे अनुभव हो रहा है जैसे हम प्रत्यक्ष उस कुंभ पर्व में है। कुंभ मेले में जो स्थिति अनुभव होगी वह भगवत कृपा से और गुरु कृपा से हमें घर बैठे ही अनुभव करने मिल रही है। ईश्वर हमें वे दिव्य क्षण अनुभव करने दे रहे हैं। वह दिव्य वातावरण, दिव्य चैतन्य सब कुछ अनुभव कर हम वास्तव में कृतार्थ हो गए। ये स्थिति इसी प्रकार अनुभव करते ही रहे। ईश्वर के सूक्ष्म और आनंददायी भक्ति सागर में ऐसे गोते लगाते रहे ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि इस भक्ति सत्संग का समापन ही ना हो, फिर भी समापन के माध्यम से हम सभी को ईश्वर को पुकारने का, उनका स्तुतिगान करने का एक अवसर मिलता है। उस आर्त पुकार से हमारे अंतर की लगन बढ़ जाती है और ईश्वर के प्रति भाव भक्ति अधिक मात्रा में जागृत होती है। हम सदैव इस दिव्य भक्तिमय भाव स्थिति में भक्ति सत्संग का समापन करते हैं। आज भी हम इसी प्रकार से ईश्वर को पुकारने वाले हैं, परंतु आज ईश्वर को पुकारते समय हम रोम रोम से शुद्धता की, निर्मलता की और पवित्रता की अनुभूति लेंगे। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती इन नदियों का त्रिवेणी संगम अर्थात प्रत्यक्ष पवित्रता की अनुभूति ही है। हम उसी दिव्य त्रिवेणी संगम पर हैं, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति लेंगे। वहां गंगा नदी का विशाल पात्र, शांत और पवित्र वातावरण, नदी के जल का कल कल निनाद, इन सब के कारण हमारा मन मंत्रमुग्ध हो गया है ऐसे हमें अनुभव हो रहा है। इसी आह्लाददायक वातावरण में गंगा के तट पर खड़े रहकर हम शरणागति से गंगा स्तुति करेंगे। साक्षात गंगा माता की भावपूर्ण स्तुति और जय जयकार करते समय संपूर्ण वातावरण भी उस भक्ति से कैसे निनादित होता है, इसकी अनुभूति लेंगे। गंगा माता को पुकारने से हृदय के परिशुद्धता की अनुभूति लेंगे। हे गंगा भागीरथी, आपकी जय जयकार हो। हे माँ गंगा, आप आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है। आप ही चिदानंद स्वरूप, शिव स्वरूप है। हे भागीरथी, आपके स्मरण से, आपके स्पर्श से, आपके अनुसंधान से और आपका जल प्राशन करने से हम में चेतना शक्ति जागृत होती है। हे गंगे, आप साक्षात पवित्रता की परम पावन मूर्ति है। आपके इस परम पवित्रता के कारण साक्षात भगवान शिव को भी लगा कि वे आपको अपने मस्तक पर धारण करें। इसलिए शिव जी को गंगाधर नाम प्राप्त हुआ है। हे माँ गंगा, आप इतनी पावन है कि महेश्वर ने आपको न केवल अपने मस्तक पर धारण किया अपितु वे अखंड आपकी महिमा का गुणगान भी करते हैं। अखिल मानव जाति को आपकी पवित्रता की साक्ष्य देते हैं। ऐसे है पवित्रतम गंगा माँ, आपकी अखंड और अखंड जय जयकार हो। हे गंगे, आपकी जलधारा अत्यंत पवित्र, पावन, शुद्ध और निर्मल है। आपकी जलधारा अर्थात साक्षात अमृत धारा ही है। आपके जल की केवल एक बूंद से जीव का उद्धार हो जाता है। जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। आप साक्षात कांतिमती है। ये ब्रह्मांड आपकी जलधारा से, आपकी अमृत धारा से व्याप्त है। आपके बहते हुए जल की ओर देखते ही दिव्यत्व की अनुभूति होती है। चित्त शुद्धि की, अंतरंग निर्मल होने की अनुभूति होती है। यही तो है आपके पवित्रता की साक्ष्य। हे परम पावन माते, आपकी शिव भक्ति इतनी अपार है कि आपके बहती जलधाराओं में से शंकर शंकर जय शिव शंकर ये नाद सुनाई देता है। शिव शिव ऐसे ही परम दिव्य नाद सुनाई देता है। आपकी बहते जल की तरंगे मानो भगवान शिव का स्मरण करती है। उस नाद से हमारे अंतरंग की सर्व तृष्णा शांत होकर तृप्ति की अनुभूति होती है। हे माँ गंगा, आपकी जय जयकार हो। आपकी अखंड और अखंड जय जयकार हो। हे गंगे, हमें भी आप अपने समान पवित्र, निर्मल और शुद्ध बनाइए। हमारा अंतरंग भी आपके समान ईश्वर के नाम से, उनके अनुसंधान से व्याप्त हो। हमें भी पवित्रता की अनुभूति हो और हमें उन परमेश्वर के चरणों में स्थान मिले। हे माँ गंगा, आपकी जय जयकार हो। आपकी जय जयकार हो। आपकी अखंड जय जयकार हो। गुरुदेव जी की कृपा से ये दिव्य भक्ति सत्संग संपन्न हुआ, इसलिए गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि 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 कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।